أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ انہوں نے زمین میں بہت سارے معبود بنا لیے ہیں، کیا وہ ان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ دوسری آیت کا ترجمہ، اگر زمین اور آسمان میں دو معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا، اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش کا رب ہے، ان تمام چیزوں سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لا یسألو عما یفعل، اللہ کو کوئی سوال نہیں کرتا، وہ سب کو سوال کر سکتا ہے. پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی. اسے آج تو ارادہ نہیں تھا کہ میں تفسیر کروں، چونکہ ایک ہفتے سے میری طبیعت بہت ناساز ہے، لیکن پھر بھی مجھے چین نہیں آتا. دین کی دو چار بات کوئی سن لے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے، تو پھر میرے دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی. اس نیت سے میں نے تفسیر تو مغرب کے بعد تھی، لیکن دوپہر ہی سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ کب مغرب آئے میں تفسیر کروں. اللہ کے دین سے محبت ہوتی ہے، لوگوں آپ لوگوں سے محبت ہوتی ہے، تو میں سوچتا تھا کہ اللہ سے دعا بھی کرتا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. خیر پھر بھی 50-50 ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے شفا کاملہ آج لا دائم ہمیشہ نصیب فرمائے. ایک بات میں نے لاسٹ ویک یعنی لاسٹ تفسیر میں کہی تھی، چونکہ ہمارے دوست آ چکے تھے تو اس کی برابر تفسیر نہیں ہوئی تھی، کہ اوپر سبق کے اندر میں کہ فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے اینجلز رات دن اور رات میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو پھر سوال قائم ہوتا ہے کہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کہ دوسرا کام فرشتے کب کرتے ہیں؟ یعنی بارش برسانا، ہوا چلانا، سمندر کے کنارے بیٹھنا، پتھروں کے یعنی پہاڑوں کے فرشتے، یہ سب جتنے دوسرے کام ہیں بہت سارے فرشتوں کے ہیں، وہ کب کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب تو دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے عبادت اور کام کاج ایسا بنایا جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں اور سانس بھی لے رہا ہوں. آئی ایم بریزنگ آلسو اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. ایسے فرشتے اللہ کا کام بھی پورا کرتے جاتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھتے جاتے ہیں. ان کو تسبیح میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کام ان کو سٹاپ نہیں کرتا ہے تسبیح پڑھنے سے. دوسرا جواب یہ ہے، دا سیکنڈ آنسر جو لکھا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की किस्में बनाई है। आसमान में कुछ फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाने वाले हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो अर्श की चारों तरफ तवाफ करने वाले, और कुछ फरिश्ते हैं जो कयाम में हैं, जो रुकू में हैं, सजदे में हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले। जमीन में कुछ फरिश्ते हैं, कुछ हवा के, कुछ पहाड़ों के, कुछ इसके, कुछ इसके, कुछ ये ऐसी मजलिस में बैठकर तलाश करते रहते हैं कि कहाँ जिक्र की मजलिस, कुरान की मजलिस, हदीस की मजलिस, उसमें आके बैठ जाते हैं, वो तलाश करते हैं। तो बुखारी शरीफ की सही हदीस है, वो तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन मेरे नबी तो झूठ नहीं बोलते, और बुखारी शरीफ की सही हदीस है, वो फरिश्ते आके बैठ जाते हैं उस मजलिस में, वो तलाश करते हैं कौन सी मस्जिद में, कौन सी जगह में दीन की मजलिस होती है, वहां आके वो बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को यहाँ जिक्र किया जो रात दिन तस्बीह करते हैं, उनका और कोई काम नहीं सिवाय तस्बीहात के, सिवाय तस्बीह। या फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों की शक्लें ऐसी बनाई है कि वो काम भी करते हैं और तस्बीह भी पढ़ते हैं, जैसे बाज़ रिवायत में है फरिश्तों की कि एक फरिश्ता रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठता है, और ये फरिश्तों के अजीब हालात में अरबी में है उसमें लिखा है कि एक फरिश्ता वहाँ बैठता है, सारी दुनिया में जिस जबान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाता है वो उस जबान को समझता है और वो दुरूद अल्लाह के नबी को पहुंचाया जाता है। ये फरिश्तों की ताकत है, अल्लाह पाक ने पैदा किए बड़े बड़े फरिश्ते हैं जिसके एक अंगूठे पर लिखा है उसमें सारे समंदर का पानी भी रखे तो नहीं गिर सकता। अल्लाह की ये मखलूक है फरिश्ते, हमें तो नजर नहीं आते, इसलिए अल्लाह खुद कह रहे हैं अल्लाह की फरिश्तों की मखलूक फौज को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह की जात के। कितने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए, अब अंदाजा करो हम हर साल 10 मरतबा भी या 15 मरतबा या 20 मरतबा उमरा के लिए जाएं तो हमें हर वक्त तवाफ का मौका मिल जाता है जब भी जाएं, लेकिन फरिश्ते इतने ज्यादा है कि एक बार उन्होंने ऊपर वाले तवाफ, ऊपर वाले अल्लाह के घर का एक तवाफ जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, इसी काबा के ऊपर है बैतुल मामूर, उसका एक बार तवाफ कर लिया कयामत तक उसकी बारी नहीं आएगी, इतने फरिश्ते हैं अल्लाह पाक ने पैदा किए। बाज रिवायत में लफ्ज कत है, कत यानी आसमान भी बोलता है कत, इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, यानी वजन उसका है। जो अल्लाह की मखलूक है तो उसका एक जवाब यह है कि हर फरिश्ता अल्लाह के काम में लगा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार, और उनकी तस्बीह क्या है सही हदीस में सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम, और एक रिवायत में सुबहानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, फरिश्तों की तस्बीह है ये। सही रिवायत में है कि जो आदमी इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह उसकी रोजी में बरकत दे देता है, यकीन के साथ इस तस्बीह को अगर पढ़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम जरूर उसको बरकत। एक तजुर्बा एक अरब शेख ने मुझे बताया कि कहा करके देख ले, फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान अगर कोई आदमी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ने की पाबंदी करें, कितना ही कर्ज हो, कितनी ही परेशानी हो, कुछ ही दिनों में अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। इसका तजुर्बा कर रहा फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान। खैर ये बात भी याद रखें कि दुनिया में एक कौम तो ऐसी है जो अल्लाह को ही नहीं मानते, जिसको हम कम्युनिस्ट कहते हैं, वो कहते अल्लाह है ही नहीं, ऐसे लोग भी हैं, बस उनको दुनिया वैसे ही चलती नजर आती है, वैसे ही माँ के पेट से पैदा हो गया, वैसे ही माँ के पेट में पल गया और वैसे ही बड़ा हो गया, जबकि मैं घर के अंदर मेरी बीवी मेहनत किए बगैर खाना नहीं बना सकती तो ये दुनिया कैसे चलेगी अल्लाह के बगैर। एक जाहिरी मिसाल सिंपल, एक आदमी गाड़ी चलाए जब तक बैठ करके उसको ऑन न करे गाड़ी नहीं चला सकता, कि अल्लाह के चलाए बगैर दुनिया चलेगी। इसलिए एक कौम तो है जिसको ईथियस कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो अल्लाह ही को सिरे से नहीं मानते। दूसरे दो तबके हैं, उसमें एक तबका है, एक जमात, एक ग्रुप है, वो अल्लाह को तो मानते हैं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। वहदहू ला शरीक, अल्लाह अकेला है, उसकी जात और सिफात में कोई शरीक नहीं है। और अल्लाह तबारक व ताला को ये बात इतनी नापसंद है कि कोई अल्लाह की जात के साथ शरीक करे। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कह दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक व यग़फिरु मा दून ज़ालिक, मैं सबको माफ कर दूंगा लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। जिसने मेरे साथ दूसरे को शरीक किया अल्लाह की जात में सिफात, उसको माफ नहीं करूंगा जब तक कि तौबा ना कर ले। हाँ, तौबा कर ले माफ हो जाता है, तौबा से तो सारे ही गुनाह माफ हो जाते। लेकिन कह रहे हैं शिर्क, और अल्लाह कुरान में कहते इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, अल्लाह खुद कह रहे हैं। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, जिसने अल्लाह के साथ जात के साथ किसी को शरीक किया उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा अक्यूजिशन बोहतान डाला। तो एक जमात तो है दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की जात अकेली है हर चीज में, खिलाने में पिलाने में, खालिक राजिक अकेला अल्लाह है, उसकी जात में सिफात में कोई शरीक नहीं है। और दूसरी एक जमात ऐसी है जो अल्लाह को अल्लाह तो मानती है लेकिन यूं कहती है कि अल्लाह ने अपने मातहत नीचे लोग रखे हैं और उनको अपना काम सुपुर्द कर दिया है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये मक्का के लोग तवाफ करते थे मुशरिकीन, तो वही लब्बैक पढ़ते थे जो हम पढ़ते हैं, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्नअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आगे वो बढ़ाते थे इल्ला तमलिकहु शरीक लक वला मलक, हाँ जिसको तूने काम सुपुर्द किया है उसको हम शरीक करेंगे, जिसको तुमने काम सुपुर्द किया है, गोया तेरे हाथ नीचे छोटे छोटे रब भी है तेरे हाथ नीचे, हालांकि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना आसमानों में ना जमीनों में, ये तो काम है दिया है फरिश्तों को वगैरह को, ये यानी ये इख्तियार इनको दे दिया। एक तो होता है काम सुपुर्द करना, ये क्यों भाई मेरा ये काम कर दे, और एक ये तुम्हें इख्तियार है तुम घर ले लो बेच दो जो करना, इख्तियार अलग चीज है। तो कहेंगे जब तक हम इन छोटे रोगों की इबादत नहीं करेंगे वहां तक वो अल्लाह की या हमारी सिफारिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, ये शिर्क है। और उसी को यहां बयान कर रहे हैं अल्लाह पाक आज के सबक में, अमितखदू आलिहतम मिनल अर्दी हुम युनशिरून, ये लोग जमीन में माबूद बनाते हैं, दे क्रिएटिंग दे मेकिंग देयर गॉड्स इन द लैंड। कौन? किसी को लात बना दिया, उज्जा बना दिया, मनात बना दिया, देवी बना दिया, देवता बना दिया, गंगा बना दिया, गंगा को पूजा करते, जमुना बना दिया, हनुमान बंदरों का सरदार होता उसको अपने गोद कहते हैं, कभी सांप की पूजा कर ली, कभी समंदर की पूजा कर ली, कभी सितारे की पूजा कर ली, कभी सुबह सूरज निकलता उसकी पूजा करते हैं, हर चीज की पूजा कर, पत्थर की पूजा करते हैं। तो ये जो है चांद सूरज पार, ये सब मिसालें अल्लाह ने कुरान में दी है, ये चला आ रहा है पहले जमाने से, सूरज की पूजा करते थे, चांद की करते थे, सितारों की करते थे, पहाड़ों की, समंदर की भी करते हैं, सांप की भी, जो नाग होता है ना देखना उसकी भी पूजा करते। तो ये सब जो है जिन जितनी चीजें उनके यहां है सब की, जिसमें थोड़ा सा कुछ नजर आ गया उसकी पूजा शुरू हो गई। तो अल्लाह कह रहे चलो तुमने जितने भी माबूद की पूजा की है, हुम युनशिरून, क्या तुम्हें दोबारा जिंदगी दे सकते हैं? जैसे अभी मुझे, मैं जिंदा हूं, मैं मर जाऊं, क्या दोबारा ये मुझे जिंदा कर सकते हैं? लेकिन सवाल होता है, देखो मुफस्सिरीन ने भी कहां दिमाग दौड़ाया है कि ये लोग तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को तो मानते ही नहीं है, फिर जिंदा होने का क्या सवाल है? They don't believe. They said that there is no resurrection after death. خلاص خلاص. वो तो मानते ही नहीं है दोबारा जिंदा होने को, तो फिर यहां सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्या ये जिंदा कर सकते हैं उनको दोबारा। अगर उनका बिलीफ ऐसा हो कि दोबारा जिंदा होना है, तो सवाल था कि चलो भाई ये माबूद उनको दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो उसका एक जवाब तो ये दिया है, बहुत अच्छा जवाब है इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर राजी में, कि हम लोग जितनी इबादत करते हैं मकसद क्या है? अल्लाह के यहां सवाब मिले, है ना, या अल्लाह राजी हो जाए, यही तो मकसद होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फर्ज नमाज में आते हैं इसलिए ताकि नेक्स्ट वीक मेरा केस है तो मैं जिट जाऊं, बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि बीवी ने घर से निकाल दिया तो जरा फर्ज नमाज पढ़ लेते दो चार दिन के लिए, दोबारा बीवी ने बुला लिया नमाज छूट गई। लेकिन असल तो मेन क्या है, हम अल्लाह के लिए इबादत करते हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अल्लाह हमें सवाब दे। सवाब क्या है? जन्नत दे या आगे अच्छी चीजें दे। तो ये लोग भी अपने माबूदों की इबादत करते हैं सवाब की नियत से, उनको राजी करने की नियत से, और जाहिरी बात है कि दुनिया में तो इनको सवाब मिलने वाला नहीं, सवाब तो मिलता है मरने के बाद। तो अगर तुम इबादत करते हो इनकी सवाब की नियत से, तो फिर क्या ये तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे कि तुम उनकी इतनी इबादत कर रहे हो? जब तुम्हें दोबारा जिंदा ही नहीं करेंगे तो सवाब का तो मसला ही नहीं। तुम क्यों इबादत नहीं करते उस अल्लाह की जो मरते ही तुम्हें जन्नत नजर आती है, मरते ही कब्र में भी और कयामत में भी, जो अल्लाह के नेक बंदे उनका तो क्वेश्चन नहीं, अल्लाह अर्श के साय में जगह देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से औदे कौसर का पानी मिलेगा, नेक लोगों के लिए तो बशारत है। हाँ, ये बात है कि अगर कोई आदमी नेक काम करे इस नियत से, इबादत करे किसी भी गॉड की, किसी भी आइडल्स की, तो उसकी नियत यह होगी कि मुझे सवाब मिलेगा। लेकिन अगर सवाब, अगर दोबारा जिंदा ही नहीं कर सकते हैं तो सवाब का तो मसला ही पैदा नहीं होता। या दूसरी बात, चलो अगर बिलफर्ज दोबारा वो जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम इबादत करते हो इन माबूदों की और तुम चाहते हैं कि ये, अगर मैं मर जाऊं तो वैसे ही मुझे जरा दोबारा दुनिया में जिंदा कर दे, मैं ज्यादा रहूं, तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो भी हो, अल्लाह कह रहे हैं कि अमित तखदु आलिहतम मिनल अर्दी हुम युनशिरून, अल्लाह की जात वो है जो हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगी। कैसी जिंदा? हदीस में आता है कि हमारी खटना हुई है ना, सकम साइज, वो चमड़ी किसी को पता है कहां है, कहां दफन हुई, कहां मेल्ट हो गई? हम बच्चे थे, सकम साइज हुई, खटना हुई जी, सुन्नती हुई, तो जो चमड़ी जो है वो काटी गई है, वो चमड़ी कहां है? फरमाया कयामत के दिन तुम कब्र से उठोगे, वो चमड़ी दोबारा आपके साथ होगी। इंसान तो छोड़, लाखों करोड़ों मिलियनों ट्रिलियनों बिलियनों इंसान दुनिया से चले गए, लेकिन एक की हड्डी दूसरे में नहीं जाएगी, दूसरे की हड्डी तीसरे में नहीं, जो मेरा दुनिया में फेस है वही फेस वहीं पर होगा, कोई मिक्सचर मिक्सअप नहीं होगा। ये अल्लाह की जात है, कादिर मुतलक है। उस अल्लाह की क्यों इबादत नहीं करते जिसने वादा किया है? फरमाया कैसी दलील ले आए। अगली दलील जो है ऐसी दलील है, अकली दलील है, लेकिन आज तक टिल टुडे 1400 ईयर्स हो गया, कोई इस दलील को तोड़ नहीं सका। नो बड़ी ब्रोकन दिस दलील ऑफ अल्लाह ताला। क्या दलील? लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर दुनिया में दो खुदा हो, कितने हो? दो खुदा हो तो फसाद होगा, है ना, फसाद ही होगा ना। एक खुदा कहेगा बारिश, दूसरा खुदा के नो बारिश नो रेन, एक खुदा कहेगा गर्मी, दूसरा कहे विंटर, कैसे चलेगी दुनिया? तो जो ओवर पावर होगा दूसरा मगलूब हो जाएगा, तो फिर ये कैसे खुदा हो गया? अगर दोनों बराबर है तो भी प्रॉब्लम, ऊपर नीचे है तो भी प्रॉब्लम। इसलिए फरमाया अल्लाह ने, जवाब दो मुझे, अगर दुनिया में दो खुदा हो, एक जमीन में एक आसमान में, या दोनों दुनिया में हो, तो कैसे दुनिया चलेगी? ये लोग कह रहे हैं अहरमन अलग है, यजदान अलग है, एक बारिश का है और एक बगैर बारिश का, एक गर्मी का एक सर्दी का, दो दो खुदा मानते हैं। अल्लाह कह रहे हैं लाओ दलील लाओ। इसलिए ये नाम था उसका अब्दुल मलिक इब्ने मरवान। उसके जमाने में दूसरा आदमी भी खड़ा हो गया बादशाह बनने के लिए। वो होता है हर साल कोई दो आदमी खड़े हो जाते हैं ना, मुझे भी हुकूमत में खड़ा होना है, हाकिम बनना है। उसने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद कहा, ये जो मकतूल था जिसको मैंने कत्ल किया, मुझे बहुत प्यारा था, मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन चूंकि दो सांड एक सांदनी पर नहीं जा सकते, तो फिर एक मुल्क में दो हाकिम कैसे बन सकते, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। जब एक मुल्क में दो हाकिम नहीं रह सकते हैं, जैसे शेख सादी क्या कहते हैं कि एक गुदरी में एक ब्लैंकेट में 10 फकीर सो सकते हैं, लेकिन एक मुल्क में दो बादशाह नहीं हो सकते, एक मुल्क में नहीं हो सकते दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, दुनिया में दो खुदा कैसे हो सकते हैं कि तुम लोग दो खुदा को मानते हैं? अल्लाह उसका जवाब दे, सुभान अल्लाह, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर दुनिया में दो खुदा होते तो फसाद मच जाएगा, कोई क्या कहेगा, वो एक ये आधे इसके फेवर में आधे इसके फेवर में। और एक जगह इधर लब तगाओ इला दिल अर्श सबीला, अगर दूसरा खुदा मेरे मुकाबले में होता तो वो मुझे अर्श तक मारने आता। अल्लाह क्या कह रहे, इधर लब तगाओ इला दिल अर्श सबीला। वैसे याजूज माजूज तो करेंगे, याजूज माजूज जब दुनिया में आएंगे ना तो सारी दुनिया का सब पानी पी जाएंगे, ये और वो सब सब खत्म हो गए, फिर ऊपर तीर चलाएंगे आसमान में, ऊपर गॉड को मारेंगे, और अल्लाह पाक उनके तीरों को खून वाला बनाकर भेज देंगे, खून, समझे, हमने मार दिया ऊपर भी कोई बाकी नहीं हमारे सिवा। फिर अल्लाह एक बीमारी ऐसा देगा सारे याजूज माजूज मर जाएंगे, जहां उनको बीमारी लग जाएगी बदन। ये एक वाकई है, ये हदीस में है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, अगर दो खुदा होते तो ये क्या करते, इधर लब तगो इला दिल अर्श सबीला, ऊपर अर्श पे जाए खुदा को मार देते। तो एक खुदा दूसरे को ही मारने के लिए चलते हैं ना, कि आज देखो ना दुनिया में वो दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो पीछे से उसको मरवा देते, चाहते ही नहीं दो खुदा। इसलिए यहां बहुत मुश्किल, अल्लाह कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता था, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा माबूद नहीं है जो दुनिया का निजाम चला सके, एक ही अल्लाह है। बारिश की जरूरत बारिश, गर्मी की जरूरत गर्मी, ठंडी की जरूरत ठंडी, कहां क्या करना है उसके हुक्म से चलता है। इन हुक्म इल्ला लिल्ला, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, किसी और का नहीं। ये है, और बात भी अजीब, अल्लाह क्या कह रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये मेरे साथ ऐसी बात कर रहे हैं। फसुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है। सुबहान के माना क्या है? अल्लाह इन तमाम अयूब से, फॉल्ट से, ऐब से पाक है। किससे? यानी वो मैं मेरी जबान में कहता हूं रब्बिल अर्श अम्मा यसीफून, इनके बकवासों से, इनकी ऐसी बातों से अल्लाह पाक है, अल्लाह को जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह शिर्क से बड़ी पाक है अल्लाह की जात। अल्लाह कौन उसको पूछ सकता है? अल्लाह को कोई सवाल कर सकता है? अगर वो गर्मी में बारिश बरसा दे तो है कोई दुनिया में कि अल्लाह क्यों बरसाई? कोई नहीं पूछ सकता। अगर उसने गर्मी में स्नो भेज दिया, कोई है उसको पूछने वाला? गर्मी में फ्लड आ गया, कोई है उसको पूछने वाला? जलजला आ गया, क्या है कोई पूछने वाला क्यों भेजा तूने? अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता, वो जो चाहे करता है। लेकिन अल्लाह सबको पूछ सकता है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो। मेरे नबी को फौरन सवाल किया अल्लाह के, अल्लाह ने, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक, शहद को मैंने हलाल किया, अपनी जात के लिए तुमने क्यों हराम किया? देखा, फौरन सूरह तहरीम की आयत उतार दी फौरन। चूंकि एक लंबा मसला था, आपकी एक अहलिया रोजाना असर के बाद ग्लास में शहद डालकर पिलाती थी, दूसरी पड़ती होती है ना, सौकनों की पड़ती होती है ना, आपकी नौ बीवियां थी तो सौकन की पड़ती आधी इधर आधी इधर थी। दूसरे ने कहा कि ये क्यों पिलाती है? आज हम कोई प्लानिंग करेंगे और अल्लाह के नबी से कहेंगे, पूरी सूरह तहरीम में इसका जिक्र है, हम कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह से कोई बदबू आ रही है, कुछ वो चिकनी कोई चीज खाकर आए हैं, यानी ऐसा लगता है कोई जंगल की कोई चीज है, बदबू आ रही है। अल्लाह के नबी कहते मैंने तो कोई बदबू वाली चीज नहीं, मैं तो शहद का पानी पिया, अल्लाह के नबी पीते थे। तो अल्लाह के नबी ने, अच्छा मेरे मुंह से बदबू आ रही, अल्लाह की कसम कल से मैं शहद वाला पानी नहीं पीऊंगा, कह दिया। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे नबी को बताओ, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम, क्यों हराम करते हो? मा हल्लल्लाहु लका, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। नबी को फौरन सवाल कर दिया। गज़वे तबूक में कुछ मुनाफिकीन तैयार हो गए जाने के लिए, बैतुल तबूक में लंबा सफर था 900 किलोमीटर का, तैयार हो गए, रेडी हो गए, लेकिन जाने की बिल्कुल तैयारी पर एक्सक्यूज करने लगे। किसी ने कहा, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मर जाएगी तो दफन करने वाला कोई नहीं है, मुझे छुट्टी दीजिए, मैं सफर में नहीं आऊंगा, बहुत लंबा टाइम, 2-3 महीने में शायद मेरी माँ मर जाए तो कौन दफन करे, जा। दूसरा है, हजरत वो मेरा वर्कर जो मजदूर है नहीं है, और बिल्कुल तैयार खेती है, खजूर का तोड़ने का जमाना है, फुला और फुला, हजरत छुट्टी दे दीजिए कि मेरा काम वाला नहीं आ रहा है। ऐसा कितनी भी एक्सक्यूज करते, आज भी एक्सक्यूज करते ना, ऐसा फुला काम है, जाओ। तो 2-4-5 मुनाफिक थे, वो भी एक्सक्यूज करके चले गए। अल्लाह ने फौरन आयत उतार दी, अफल्लाहु अन्क, मेरे नबी अल्लाह तुम्हें माफ कर देते हैं, लिमा अज़िन्त लहुम, इनको क्यों परमिशन दिया आपने, क्यों कहा जाओ? अभी इनका झूठ है ना जाहिर हो जाता, वो तो आने वाले ही नहीं थे, दे वर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूज। आप उनको ना कहते नहीं जा सकते ना, पता चल जाता आपको कि ये कितने सच्चे हैं, आपने क्यों उनको इजाजत दी? लेकिन चलो, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, लेकिन आपने क्यों इजाजत दी? आई बात समझ गए। गज़वे बदर में पकड़े गए 70, तो अल्लाह के नबी सासन पूछा, अबू बकर सिद्दीक बताओ क्या करें 70 के साथ, छोड़ दो, पैसे ले लो, छोड़ दो। हजरत उमर, आपका क्या मशवरा है? सबको खत्म कर दो, उनके खानदान को दे दो, क्योंकि वो हिजरत करके आए थे, जो उनके खानदान, उनको एक एक को दे दो, खत्म कर दो, ऐसे इशारा, खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसको छोड़ दिए, पैसे ले लेकर छोड़ दिए। اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, حضرت زینب کے شوہر بھی تھے. دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے ہیں, مسجد نبوی سے رو رہے ہیں, حضرت عمر داخل ہو رہے ہیں, ایسے داخل ہو رہے ہیں. پوچھا اللہ کے حبیب, why are you crying, مجھے بتاؤ, وہ بول نہیں رہے, مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی رو ہوں آپ کے ساتھ, I also cry with you, مجھے بتاؤ. بہت زبردستی کی تو فرمایا, عمر عذاب یہاں باہر تک آ چکا تھا, تیری جو رائے ہے وہی اللہ کی رائے تھی, تیری جو رائے ہے وہی اللہ کی رائے تھی. کیوں؟ ہم نے ان کو چھوڑ دیا. احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, چھوڑا تبھی تو انہوں نے شہید کیا ان کو. تیری جو رائے تھی وہی رائے اللہ کی بھی تھی, عذاب آ ہی چکا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال اللہ کر سکتا ہے, ہمیں اور آپ کو اللہ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں, زمانے کو گالی نہیں دیتے, وہ مجھے گالی دیتے ہیں. ٹائم ایسا ہے نہیں, وہ مجھے گالی دیتے ہیں اس لیے کہ زمانہ میں بدلتا ہوں, وہ مجھے گالی دیتے ہیں. اللہ کی مرضی کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. ہم کہاں اللہ کو کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کیا چاہتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, وہ جو کرتا ہے اس کو کوئی پوچھا نہیں جاتا. وہم یسألون, لیکن لوگ لوگوں کو اللہ کیا ہے, پوچھتے ہیں, پوچھتے ہیں اور پوچھیں گے قیامت کے دن. اور آگے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, ام اتخذوا من دونہ آلہا, یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بناتے ہیں. دی جوائننگ پارٹنر ادرس وتھ اللہ. قل ہاتوا برہانکم, میں نے تو دلیل دے دی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو دنیا ختم ہو جاتی. تم لوگ دلیل لاؤ میرے پاس, یو شو می دیٹ آئی ٹول یو تو دیر از ٹو گاڈ, یا میں نے کہا کہ میرے علاوہ دوسرے کی عبادت کرو, کوئی دلیل ہے؟ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, یہ میرے ساتھ ذکر بھی ہے, یعنی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, صحابہ, یہ میرے ساتھ کھلی دلیل ہے. اور وذکر من قبلی, سارے انبیاء, دلیل ہے کہ ایک ہی اللہ ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے, ایک ہی اللہ ہے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون, بلکہ ہم نے تو بتلا دیا, ہمارے پاس تو یہ سارے صحابہ موجود ہیں. یا بعض محدثین فرماتے ہیں یہ میرے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے, لا الہ الا انا فاعبدون, کوئی نہیں سوائے میری ذات کے, میری عبادت کرو. اور پچھلی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے. تو ھذا ذکر من معی سے صحابہ مراد ہے, اور اس سے انبیاء مراد ہے, یا قرآن مراد ہے, یا پچھلی کتابیں مراد ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ حق بات کو جانتے نہیں اور وہ منہ پھیر دیتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول, ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول, مگر ہر رسول کے پاس ہم نے وحی بھیجی ہے, ہر رسول کے پاس ہم نے قرآن بھیجا, یعنی کتابیں بھیجی ہے, وحی بھیجی. ان انہ لا الہ, یہ وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے, میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہنے لگے رحمان کے لیے لڑکا بناتے ہو, رحمان کے لیے لڑکا بناتے ہو, سبحانہ. یعنی یہ تو الگ الگ, جیسے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے یہ بات لکھی ہے تفسیر عثمانی میں, علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے امیر شاہ خان صاحب, وہ شام گئے تھے اس زمانے میں, 100 سال پہلے کی بات, گئے تھے وہاں, اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ کہا شہر میں تو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، شہر میں کوئی نہیں مانتے، گاؤں میں لوگ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی مانتے ہیں، خدا ہی مانتے ہیں. یہ بات انہوں نے لکھی تفسیر عثمانی میں. ساتھ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں یہودیوں میں جو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا خدا کا، لیکن وہ اکثر خدا ہی مانتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ہی مانتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو مریم علیہ السلام کو مادر خدا، خدا کی ماں مانتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہے وجعل، وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں کہا ہے کہ ان لوگوں نے رشتہ جوڑ دیا اللہ کے ساتھ کہ جنات کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے ایک دوسری جگہ اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کیا، فرمایا اف اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا. اے مکہ والوں بڑے پاگل ہو تم، تمہاری لڑکی پیدا ہو تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے. لڑکی ہو گئی تمہاری لڑکی پیدا ہو تو تم اس کو زندہ دفن کر دیتے ہو. یو وش یو ون بوائے، تمہارے لیے لڑکا مانگتے ہو، وتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہو. تو کیا اللہ بیٹا نہیں پیدا کر سکتا اپنے لیے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے نہ بیٹی کی نہ بیٹے کی؟ اسی لیے میں نے کہا تھا جمعہ میں کہ کل ہو اللہ احد میں اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس کو نہ بیوی کی ضرورت نہ ماں کی ضرورت باپ کی ضرورت، اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں، ایک اللہ ہے. سو یہاں پر کہہ رہے ہیں وقال اتخذ، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک جگہ پر تو 16 پارے میں گزر گیا، کیا کہا یہ اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے کہ پہاڑ ان پر توڑ دیا جائے، اتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے لیے بیٹا، اللہ کے لیے بیٹی، بل عباد مکرمون، سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے بھائی، پاک ہے. بل عباد، اگر اس کو بیٹا ہی بنانا ہے تو تمہیں کیا پوچھے گا وہ، بل عباد مکرمون، یہ تو فرشتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، انسن ہیں، بہت اللہ سے قریب ہے. لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے. لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں. وہم بامرہ یعملون، اس کے حکم سے چلتے ہیں. وہ کہیں اللہ کہے کہ بارش برساؤ، تبھی، اپنی طرف سے نہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے جبرائیل سے، بہت دل چاہتا ہے تو کیوں جلدی جلدی میرے پاس نہیں آتا، بار بار کیوں نہیں آتا؟ جبرائیل السلام نے کیا کہا؟ What he said, I can't come to you without the permission of Allah. I can't come to you. اللہ کے نبی کو جبرائیل نے کہا جب تک میرا اللہ مجھے نہ کہے I can't come to you. 24,000 مرتبہ آئے جبرائیل السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے. یہ 24 سال میں قرآن بھی اترا. تو کہہ رہے ہیں لا یسبقون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے چاہے آگے بھی جانتے ہیں پیچھے بھی جانتے ہیں. جب فرشتے آسمان میں ہوتے ہیں، نیچے کا جب نیچے ہوتے ہیں تو آسمان اللہ جانتا ہے، فرشتوں کے اوپر بھی نیچے کی بھی ہر چیز جانتا ہے. ولا یشفعون، فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے بھائی. ہاں وہ پوچھتے ہیں اللہ سے کہ ہم سفارش کریں، ہاں سفارش کریں. حول العرش، عرش کی چاروں طرف جو فرشتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یسبحون رات اور دن میں. تو سفارش نہیں کرتے الا لمن ارتضا، ہاں اس شخص کے لیے جس سے اللہ راضی ہو. मालूम होता है मंजल लदी यशपाओ इंदहु, किसी को सिफारिश का हक नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, न नबी को न वली को किसी को, तो फिर कैसे शरीक कर सकोगे, तो कैसे इनकी इबादत करते हो। वहुम मिन खशयतिही मुशफिकून, फरिश्ते तो क्या कह रहे हैं, हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरते हैं। जिब्रील अलैहि सलाम डरते थे, बहुत डरते कि शैतान ने सालों इबादत की और एक सजदा न करने पर मर्दूत कर दिया गया, कोई ऐसा ना हो कि हम पर अल्लाह का गुस्सा आ जाए। ये चीज है, अंबिया भी डरते हैं, फरिश्ते भी डरते हैं। आखिरी आयत, वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही, जो कोई कहे उनमें से यानी उन फरिश्तों में से कोई एक भी यूं कह दे मैं खुदा हूं अल्लाह के अलावा, फदालिक नजीह जहन्नम, उस फरिश्ते को हम जहन्नम में डाल देंगे। हालांकि फरिश्ते कभी कहते नहीं है, लेकिन अल्लाह एक मिसाल दे रहा है कि देखो फरिश्ते इतने मुकर्रब फरिश्ते हैं, अगर उसमें से कोई ये भी कह दे कि मैं भी खुदा हूं मेरी इबादत करो, तो मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। मालूम होता है अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। कदालिक नजी जालिमीन, इसी तरह हम जालिमीन को बदला देते हैं। कौन जालिम, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, हाँ वल काफिरून हुम ज़ालिमून, उनको हम बदला देंगे। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए, ये सबसे बड़ी नेमत है। और वो दुआ मैंने बार बार बताई तुमको कि हर फर्ज नमाज के बाद या कम से कम मॉर्निंग 3 times इवनिंग 3 times रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बादेज हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, 3 times उसको पढ़ लो। ए अल्लाह हिदायत देने के बाद अब गुमराह न करना, इस्लाम देने के बाद कुफर की तरफ न ले जाना, तौहीद देने के बाद शिर्क की तरफ न ले जाना, उसी पर जिंदगी भी दे और उसी पर मौत भी दे। जो आदमी इस दुआ को 3 times पढ़ता रहता है सुबह शाम, उसकी मौत कलमे पर आती है, उसकी मौत ईमान पर आती है। असल वही है, अल एतबारुल खवातिम, एतबार खातिमा का है, इबादत का नहीं कि मेरा खातिमा किस हालत में आता है। इसलिए अल्लाह से, बुखारी शरीफ में एक बंदा पूरी जिंदगी इबादत करता है, जस्ट 40 days बिफोर हिज डेथ स्टार्टिंग डूइंग हिज मिसलीडिंग, गुमराह हो जाता है, जन्म में चला जाता है। और एक आदमी पूरी जिंदगी गुमराही का काम करता है और 40 days पहले कितनी नेक काम करना शुरू कर दे, जन्नत में चला जाता है। तो फिर सवाल होता है कि हम क्यों इबादत करें, अल्लाह कह रहे नहीं इबादत करते रहो, मैं तुम्हें तौफीक देता रहूंगा, अगर तुम सही काम करोगे तुम्हें ईमान पर मौत दूंगा। इसलिए नेक काम करते रहे और अल्लाह से मांगते भी रहे, अल्लाह ईमान पर मौत देना, अल्लाह ईमान पर मौत देना, कुफर से बचाना। बल्कि हम तो कहते हैं मुझसे लेकर कयामत तक मेरी जितनी नस्ल आएगी, मेरे मुझसे लेकर कयामत तक कुफर से शिर्क से बिदात से कबाइर से उनकी हिफाजत करके अल्लाह उनके ईमान पर बाकी रखना और ईमान पर मौत देना। अभी हालात इतने खराब है, आइंदा हमारी नस्लों का क्या होगा हमें पता नहीं है, अल्लाह ताला हमारी नस्लों की भी हिफाजत फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दुआ कर लेते हैं। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام۔ اللہ تیری توفیق سے ہم نے قرآن کو سنا اور سمجھا ہے، اللہ قبول کر لے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، قرآن کی برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں پتہ ہے تو کسی چیز کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اللہ، ہم محتاج ہیں اللہ، ہم محتاج ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی تو تیرے نبی سے سنا، اے اللہ جب اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو دین کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ یقیناً تو ہمیں لایا ہے، دین کے کام میں بٹھایا، اور وہ بھی تیرا ہی قرآن ہے، تیرا ہی قرآن ہے، اس کے اندر تو نے ہمیں بٹھایا۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ماں اور باپ کی دونوں کی طرف سے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، میری اور بیویوں کے رشتے، اے اللہ ہماری اور ہماری بیویوں کے رشتہ داروں کی طرف مغفرت فرما، قریب کے دور کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اللہ اپنے دوست احباب کی مغفرت فرما، تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، مجلس میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما، مکسرڈ کے ذریعے دنیا میں لوگ سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت زندہ ہے، جتنی دور جا چکی دنیا سے، سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھنا، اللہ شرک سے بچا لینا، کفر سے بچا لینا، اے اللہ بدعات سے بچا لینا، فتنوں سے بچا لینا، کبائر سے بچا لینا. اے اللہ یہ سب تیرے قرآن ہی کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، گھروں میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی اولاد، ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنا، اللہ عالم دین بنا، ہماری نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرما، اولیاء متقین پیدا فرما. ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو تیرے دربار میں پیش کریں اور ہم معافی مانگے، کوئی نہیں ہے اللہ، کوئی اخلاص والا عمل نہیں. اے اللہ تیرا قرآن ہے، اس کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ اسی قرآن ہی کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. مسلمانوں کی حفاظت فرما، ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو بھی لوگ بیمار ہو جہاں کہیں، سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی بات جو کہی جاتی ہے، اللہ تو قبول فرما، قبول فرما، مقبول فرما، منظور فرما، مبرور فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مجلس میں بیٹھنے والے، سننے والے جہاں کہیں، سب کے آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.